आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो मेरा नाम है गिन्नी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 15, जिसका नाम है हमारे गौरव। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब निकालेंगे, उसमें पेज नंबर 84 यानी कि 84 निकालेंगे, जिस पे पार्ट नंबर 15 है, जिसका शीर्षक है हमारे गौरव। तो सभी ने निकाला, शुरू करें। चलिए। चरक। हमारा देश बहुत प्राचीन है। जो हमारा देश है भारत, वो बहुत ही पुराना है। हमारे यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक एवं चिकित्सक हुए हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे महान साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। बहुत सारे चिकित्सक, डॉक्टर्स हुए हैं। इनमें से एक थे चरक। इनमें से बहुत सारे महान वैज्ञानिक और चिकित्सक, इनमें से एक थे चरक। इनका नाम चरक कैसे पढ़ा, इसकी एक मजेदार कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि चरक नाम कैसे पढ़ा, उसकी कहानी को सुनते हैं, ठीक है? चरक। चरक शब्द का अर्थ है चलने वाला। क्या मतलब होता है चरक शब्द का? चलने वाला। उन्हें जन सेवा में इतनी रुचि थी कि ये जगह जगह घूमते हुए जन साधारण की चिकित्सा किया करते थे। जन सेवा होती है, जन होते हैं लोग, मतलब इनमें लोगों की सेवा करने की भावना इतनी ज्यादा थी कि ये जगह जगह पर घूमते हुए भी लोगों की चिकित्सा, मतलब कि लोगों का इलाज किया करते थे, तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। और अपना जो उनका चिकित्सा का विज्ञान था, उसको क्या करते थे? उसका प्रसारण करते थे। इसलिए लोग उन्हें चरक नाम से जानने लगे। समझ आया उनका नाम चरक क्यों पढ़ा? चरक का मतलब होता है चलने वाला। उनको लोगों की सेवा करने में इतना प्यार था, उन्हें लोगों की सेवा करना इतना पसंद था कि वो चलते चलते घूमते हुए लोगों की चिकित्सा किया करते थे, इसलिए उनका नाम चरक पड़ा। चित्र नंबर 15.1 में देखें चरक कैसे दिखते हैं, देखा सबने? इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। इनका जो सबसे फेमस वाला ग्रंथ है उसका नाम क्या है? चरक संहिता, जिसके 8 खंड हैं, मतलब 8 भाग हैं। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गुण तथा पहचान का वर्णन है। उसके अंदर क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट है, जड़ी बूटियों के गुणों के बारे में बताया गया है, तथा जड़ी बूटियों के पहचान के बारे में बताया गया है। उनकी धारणा थी कि चिकित्सक को दयावान और सदाचारी होना चाहिए। उनका क्या मानना था कि जो डॉक्टर होते हैं, जो वैद्य होते हैं, उनको कैसा होना चाहिए? दयावान, दया की भावना रखने वाला, और सदाचारी, सदा क्या करने वाला? सत्य वचन बोलने वाला, सदाचार अपनाने वाला। उन्होंने चिकित्सकों के लिए प्रतिज्ञाएं भी लिखी, ठीक है? समझ आया इनका नाम चरक क्यों पढ़ा था? पता कीजिए और लिखिए। अब आपको पता करना है और लिखना है, आपके घर या गांव के आसपास कौन कौन आयुर्वेदाचार्य हैं, मतलब आपके घर के आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिनको आयुर्वेद के बारे में ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है। अब आपको ये पता करना है कि आपके घर के आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, जो लोग अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें आयुर्वेदिक दवाइयां देकर ठीक करते हैं। ये आप घर से पता कर लाएंगे। आगे है, आपके गांव या शहर में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आयुर्वेद के अनुसार निशुल्क उपचार करते हैं। ये क्या कह रहा है? बोल रहा है कि आपके गांव में या शहर में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आयुर्वेदिक अनुसार निशुल्क मतलब फ्री में आपका उपचार करते हैं। अगर आपके गांव या शहर में ऐसा कोई है जो फ्री में आपका इलाज करता हो तो आप उनका नाम या डॉक्टर का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आयुर्वेदाचार्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, चिकित्सक में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, उनको दयावान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा जो पेशेंट है वो बड़ा है छोटा है, उन्हें सबकी सेवा करनी चाहिए, है ना। और आपके अनुसार अगर कुछ और भी होना चाहिए एक डॉक्टर के अंदर तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है, अपने गांव में या शहर के किसी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर से मिलकर उनके द्वारा ली गई शपथ के बारे में जाने और लिखें। आपको पता है जो डॉक्टर्स होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, उनको एक शपथ दिलाई जाती है, उनसे एक प्रॉमिस कराया जाता है। क्या प्रॉमिस कराया जाता है कि उनके लिए उनके जो सारे पेशेंट हैं, जो सारे रोगी हैं, वो एक समान हैं, वो किसी भी रोगी के लिए ज्यादा अपनापन नहीं दिखाएंगे, वो हर रोगी को कैसे ट्रीट करेंगे, एक समान ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई किसी गांव या शहर में कोई डॉक्टर है, कोई चिकित्सक है, तो आप उनसे पूछ कर आएंगे कि उन्हें क्या शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे पेज नंबर 85 यानी कि 85 निकालेंगे। आगे है सुश्रुत, हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा विकसित थी। शल्य चिकित्सा क्या होती है, यानी कि सर्जरी। हमारे देश में पुराने समय से ही शल्य चिकित्सा विकसित थी। इस क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत नाम का प्रमुख है। इस क्षेत्र में किसका नाम है, महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख है। आजकल की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले कर दिया था, जिसको हम आजकल प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, उनका वर्णन इन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था। चित्र नंबर 15.2 में देखें सुश्रुत जी को, क्या कर रहे हैं वो, शल्य चिकित्सा कर रहे हैं। वे अपने छात्रों को प्रयोग एवं क्रिया विधि से पढ़ाते थे। वे अपने छात्रों को कैसे पढ़ाते थे, एक्सपेरिमेंट कर दिखाते थे, ठीक है। वे चीर फाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों व फलों से और बाद में मुर्दा शरीर पर करवाते थे। वो कैसे अभ्यास करवाते थे, शुरू शुरू में कैसे कराते थे, चीड़ फाड़ करना हो, किसी को फाड़ना हो तो वो पहले फल पे सब्जियों पे ऐसे कराते थे, और बाद में किस पे कराने लगे, मुर्दा शरीर पर, मतलब जो इंसान मर जाता था उनकी बॉडी पर फिर वो क्या कराने लगे, अभ्यास कराने लगे, प्रैक्टिस कराने लगे, ठीक है। उनका विचार था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक एवं पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। वे क्या मानते थे कि बुक्स का ज्ञान, किताबों का ज्ञान तो बच्चों को होना ही चाहिए, उनके साथ साथ जो किताबों में लिखा हुआ है वो उनको प्रयोग करना भी आना चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना, जो किताब में लिखा है वो हमें अच्छी तरह से समझ तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ वो चीज हमें करनी भी आनी चाहिए। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप साइंस में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे जो बुक में दे रखे होंगे, आपको वो समझ तो आएंगे, लेकिन जब तक आप उन्हें खुद अपने हाथों से कर नहीं देखोगे तब तक आपका उसमें अभ्यास नहीं होगा, है ना। तो वो वही कहते थे कि बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों का आविष्कार किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के लिए 100 से भी ज्यादा औजार तथा यंत्रों का आविष्कार किया था, 100 से भी ज्यादा। इनमें से अनेक औजारों का आज भी उपयोग किया जाता है। जो उन्होंने आविष्कार किया था बहुत सारे यंत्रों और औजारों का, उनमें से कुछ यंत्र और औजार आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सोचिए और बताइए। अब आपको सोचना है और बताना है, प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने से क्या लाभ है? बताइए, प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने से क्या क्या लाभ है? देखो, अगर जो चीज हमारे पास किताब में लिखी है हम उसको समझ जाते हैं, समझने के साथ साथ हम उसका प्रयोग करना भी जानते हैं कि उस चीज को कैसे प्रयोग किया जाता है, तो वो चीज हमको ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, अगर हम प्रयोग और क्रियाविधि दोनों के बारे में जानते होंगे तो इससे वो चीज हमको ज्यादा समय तक याद रहेगी और हम क्या पढ़ पाएंगे, अच्छे से उस चीज को याद कर पाएंगे, उसका अभ्यास होने के साथ साथ हम उसको अच्छे से लिख भी पाएंगे। ठीक है, आगे है, हर व्यवसाय के लिए कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता होती है ना। हर व्यवसाय के लिए, जो हर काम होता है, हर काम के लिए अलग अलग औजार और अलग अलग यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। एक शल्य चिकित्सक को किन किन औजारों की आवश्यकता हो सकती है? जो एक सर्जरी करता है, चिकित्सक, डॉक्टर, उसको किस किस चीज की आवश्यकता हो सकती है? बताओ आप लोग, किस किस चीज की आवश्यकता हो सकती है? कपास, दवाइयां, नेत्रदर्शी मतलब देखने के लिए, और किस चीज की, पट्टी की, चश्मे की, इंजेक्शन की, कैंची की, और किन किन चीज की आवश्यकता हो सकती है? थर्मामीटर की, गैस सिलेंडर की, है ना, और बहुत सारे ऐसे और यंत्र की। या आप घर से पता करके लाएंगे कि एक शल्य चिकित्सक को किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पता कीजिए और लिखिए। अब आपको पता करना है और लिखना है आपने कौन कौन से काम स्वयं करके सीखे हैं, मतलब कि आपने ऐसे कौन कौन से काम है जो खुद से सीखे हैं। बताओ आप, आपने क्या क्या खुद से सीखा है, खुद करके सीखे हैं? ऐसा है कुछ काम जो काम आपने खुद करके सीखा हो, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आगे है, रानी दुर्गावती। भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई हैं, उनमें एक कालिंजर महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती थी। भारत में बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं, उनमें से एक कौन थी? कालिंजर महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री, उनका नाम क्या था? दुर्गावती। बालिका दुर्गावती बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार चलाने और तैराकी में तेज थी। वो बचपन से ही क्या करती थी? घोड़े की सवारी करती थी। बचपन से ही उनको तलवार चलाना आता था और तैराकी, उनको बचपन से ही स्विमिंग आती थी। उनका तीर, भाले, बंदूक का निशाना अचूक था। उनको तीर कमान चलाना भी आता था, उनको भाले का उपयोग करना भी आता था, और उनको बंदूक का निशाना बिल्कुल सही लगाना भी आता था। दोनों हाथों से तलवारें चलाने का अभ्यास अद्भुत था। वो दोनों हाथों से तलवारें चला सकती थी, अपने दाएं हाथ से भी और अपने बाएं हाथ से भी। चित्र नंबर 15.3 में देखें रानी दुर्गावती की तस्वीर दिख रही है आपको, पेज नंबर 86 यानी कि 86 पे। देखा सबने, बालिका दुर्गा एवं शिव की परम भक्त थी। जो बालिका दुर्गा थी वो किसकी भक्त थी? दुर्गा माँ की और शिव जी की। वे गड़ा राज्य की महारानी बनी। वे कौन से राज्य की महारानी बनी? गड़ा राज्य की। उनके पति दलपति शाह थे। उनके पति कौन थे? दलपति शाह। दलपति शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गड़ा दुर्ग पर हमला बोल दिया। जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी, तो अकबर की तरफ से आसफ खान ने गड़ा दुर्ग पर हमला बोल दिया और उन्होंने क्या किया, गड़ा दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। कई दिनों तक संघर्ष किया। किले के भीतर बारूद खत्म होने के कारण रानी ने अंतिम लड़ाई का निर्णय लिया। किले किले के अंदर उनके पास बारूद खत्म हो गया था, तो रानी ने क्या बोला कि लड़ाई करने का निर्णय लिया। रानी घोड़े की लगाम को दांतों से पकड़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरता से लड़ी। रानी दुर्गावती कैसे लड़ी? घोड़े की लगाम को दांतों से पकड़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरता से लड़ी। डरी नहीं, घबराई नहीं, और वो अच्छे से लड़ी। मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती रही। अंत में स्वयं को विकट परिस्थिति में देखकर अपने ही खंजर से वीर गति को प्राप्त हो गई। उन्होंने मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह पछाड़ दिया, और अंत में जब परिस्थिति बहुत ही विकट, बहुत ही मुश्किल हो गई थी, तो वो अपने ही खंजर से वीर गति को प्राप्त हो गई, अपने ही खंजर से उनकी मौत हो गई। सोचिए और बताइए, अब आपको सोचना है और बताना है। दैनिक जीवन में हमें भी छोटे छोटे काम करने हेतु साहस जुटाना पड़ता है, जैसे अपनी गलती स्वीकार करना, अलग हटकर कोई काम करना। आपने भी ऐसा कोई साहसिक कार्य किया है तो लिखिए, है ना? ऐसा होता है ना, हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में भी छोटे छोटे काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? कॉन्फिडेंस चाहिए होता है अंदर से। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस है, अगर हमारे पास भरोसा है खुद पर, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हमने कोई गलती की है, तो उसमें हमें माफी मांगने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। अगर हमें कोई काम करना है, सबसे अलग हटकर काम करना है, तो उसको करने में कभी घबराना नहीं चाहिए, बड़ों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज, अपना भरोसा कभी नहीं टूटने देना चाहिए। अगर आपको कुछ काम करना है, तो आपको वो पूरी मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? रोज पढ़ाई करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना? आपने भी अगर कोई ऐसा साहसिक काम किया है, अगर आपकी किसी चीज में कोई गलती है, आपने मान ली हो, उन बड़ों को सॉरी बोल दिया हो, है ना, ऐसा कुछ काम किया है आपने? किया है तो यहाँ पर लिख कर लाएंगे, ठीक है? यह भी कीजिए, भारत की महान वीरांगनाओं के चित्र एकत्र कर कॉपी में चिपकाइए, और उनके बारे में पूछताछ कर 4-5 पंक्तियां लिखिए। अब मैं आपको एक काम दे रही हूं जो आपको घर से कर कर लाना है। भारत में बहुत सारी महान वीरांगनाएं हुई हैं, जिन्होंने अपनी लड़ाइयां खुद लड़ी हैं बिना किसी से घबराए हुए। तो आपको किन्हीं 5 वीरांगनाओं के चित्र कॉपी में चिपका कर लाने हैं, और उनके बारे में बुक से देखकर या कहीं और किसी किताब से देखकर 4-4 पंक्तियां लिख कर लानी है, ठीक है? कौन कौन कर कर लाएगा ये काम? चलो, एक और वीरांगना का नाम मैं आपको बता देती हूँ, आपको सबको पता है वो कौन है? रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है? बाकी आप अपने आप ढूंढेंगे और उनके बारे में लिख कर लाएंगे, ठीक है? आगे पढ़े। वीर सावरकर, ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर लगातार संघर्ष करते रहे। जब हमारा देश आजाद नहीं था, जब हमारी भारत माता ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, तो उसकी स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर ने बहुत मेहनत की, बहुत साल संघर्ष किया। उन्होंने कॉलेज जीवन में एक संस्था अभिनव भारत की स्थापना की। जब वो कॉलेज में थे, तो उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। क्या नाम था उनकी संस्था का? अभिनव भारत, ठीक है? संस्था के सदस्यों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की घोषणा कर दी। संस्था के सदस्यों ने क्या किया? जो विदेशी वस्त्र थे, जो वस्त्र बाहर से आते थे, उनकी होली जलाकर ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की घोषणा कर दी। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने इटली के देशभक्त क्रांतिकारी मैसिनी की जीवनी लिखी। कहां पर रहकर उन्होंने किसकी जीवनी लिखी? इंग्लैंड में रहकर उन्होंने जो इटली की देशभक्त क्रांतिकारी थे मैसिनी, उनकी जीवन के बारे में लिखा। इसकी प्रतियां प्रकाशित होते ही जब्त हो गई। जैसे ही इनकी कॉपीज प्रकाशित हुई, मार्केट में बिकनी शुरू हुई, तो होते ही जब्त हो गई। चित्र नंबर 15.4 में देखें वीर सावरकर जी की फोटो। देखिए पेज नंबर 87 यानी कि 87। 15.4 चित्र में देखें वीर सावरकर जी का चित्र। उन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखकर इतिहास के वास्तविक रूप को स्वरूप को प्रस्तुत किया। 1857 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक लिखी और इतिहास के वास्तविक, जो हमारा इतिहास है, उसका वास्तविक वर्णन किया। इसके प्रकाशन के कारण उनके बड़े भाई को आजीवन कारावास हुआ। जब ये किताब प्रकाशित हुई, जब ये किताब बिकने लगी, इस किताब के कारण उनके बड़े भाई को पूरा जीवन जेल में रहना पड़ा। आजीवन होता है पूरा जीवन, कारावास होती है जेल। ठीक है, क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत होने के कारण इनको इंग्लैंड से गिरफ्तार कर जब भारत ला रहे थे, तब वे जहाज के शौचालय से बाहर निकलकर समुद्र में कूद पड़े। जब इनको इंग्लैंड से पकड़कर भारत ले जाया जा रहा था, तो इन्होंने क्या किया? वे जहाज के शौचालय से बाहर निकलकर समुद्र में कूद गए थे। लंबी दूरी तैर कर बंदरगाह पहुंचे, किंतु फ्रांस में फिर पकड़ लिए गए। जब वो समुद्र में कूदे, तो वो बहुत लंबी दूर तक तैर कर पहुंचे, लेकिन फ्रांस में उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन पर क्या चला? मुकदमा चला और उनको राजद्रोह के आरोप में दो आजीवन कारावास सुनाई गई। तब उन्होंने हंसकर अंग्रेज अफसर से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार इतने दिनों तक भारत में टिक पाएगी? तो उन्होंने क्या पूछा अंग्रेजी अफसर से, अंग्रेज अफसर से, कि क्या तुम्हें लगता है कि अंग्रेजी सरकार इतने दिनों तक भारत में टिक पाएगी? जेल में उन पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, उन पर बहुत सारे अत्याचार होते थे। जेल से छूटने के बाद समरसता का प्रचार करने के लिए उन्होंने अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश कराया और पतित पावन मंदिर बनवाया। जब वो जेल से छूटे, तो सभी के अंदर एक जैसा भाव उत्पन्न करने के लिए कि सभी एक समान हैं, उन्होंने ऐसा होता था, देखो पहले के जमाने में जो लोग छोटी जाति के होते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनको बोला जाता था कि आप लोग इनको छू नहीं सकते। जो छोटी जाति के लोग होते थे, वे बड़ी जाति के लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सबके अंदर एक जैसी भावना का प्रचार करने के लिए अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश करवाया और एक पावन मंदिर बनवाया। ठीक है, सोचिए और बताइए। अब आपको सोचना है और बताना है, क्या आपके गांव के मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं? आप कभी मंदिर गए हो अपने गांव में, शहर में? तो क्या उस मंदिर में सभी आ सकते हैं? या आप अपने गांव में पता कर कर आइएगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? मंदिर सबके लिए एक समान होना चाहिए, भगवान तो एक ही है ना। वीर सावरकर ने विदेशी वस्तुओं की होली क्यों जलाई होगी? क्यों जलाई होगी? क्योंकि वे क्या चाहते थे? अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना चाहते थे। वे इसलिए उन्होंने जलाई होगी क्योंकि उनके हिसाब से उनको लगा होगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। जब हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर देंगे, तो अंग्रेज जो हैं वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। वीर सावरकर को वीर क्यों कहा गया? उन्हें वीर क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने ऐसा बहुत सारा काम किया है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को बचाने के लिए, उनको स्वतंत्र कराने के लिए बहुत संघर्ष किया है और उन्होंने एक समरसता का प्रचार भी किया है, इसलिए उनको वीर कहा गया है। पता कीजिए और शब्दों का अर्थ बताइए। ये वही शब्द हैं जो हमने अभी जब हम वीर सावरकर जी की जीवनी के बारे में पढ़ रहे थे उसके बीच में आए थे। आप बताइए, आजीवन, आजीवन का मतलब क्या होता है? पूरा जीवन। कारावास, कारावास क्या होता है? जेल। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी क्या होता है? क्रांति करने वाला। क्रांतिकारी क्या होता है? क्रांति करने वाला, या कोई बड़ा चेंज चाहने वाला, कोई बड़ा क्या चाहने वाला? चेंज चाहने वाला। तो क्रांतिकारी क्या होता है? क्रांति करने वाला या कोई बदलाव चाहने वाला। आगे है समरसता, एक सदा एक भावना बनाए रखने वाला, ठीक है। फिर है राजद्रोह, राजद्रोह का क्या मतलब होता है? राज्य के प्रति वैर, ठीक है, इनका अर्थ लिखकर लाएंगे आप। आगे है यह भी कीजिए, भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपने स्कूल के पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कीजिए और पढ़िए। हमारे भारत में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी प्राण त्याग दिए, तो आपको उनके बारे में पढ़ना है, आपके पुस्तकालय में जाना है और वहां से इनकी किताब लेकर पढ़ना है, ठीक है। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पेज नंबर 88 यानी कि 88 निकालें अपनी किताब में, शुरू करें सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 देसी रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें, चाहें तो भारत के साथ मिलें या पाकिस्तान के साथ मिलें। जब भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 देसी रियासतों को यह अधिकार दिया था कि वे चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, वे चाहें तो भारत के साथ मिल सकते हैं या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाएगा वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस स्थिति से निपटाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा याद किया जाएगा। चित्र नंबर 15.5 में देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र, देखिए अपनी अपनी किताब में। शिक्षा पूर्ण कर सर्वप्रथम उन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन किया। जैसे ही उनकी शिक्षा खत्म हो गई थी सबसे पहले उन्होंने प्रांतीय राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन किया। देश में यह पहला सम्मेलन हुआ जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ। यह उस समय का पहला सम्मेलन था जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग हुआ था। उनके प्रयत्न से गुजरात में बेगार प्रथा बंद हुई। उनके प्रयत्न से उन्होंने बहुत कोशिश की और गुजरात में बेगार नाम की प्रथा बंद हुई। उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बारदोली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। बारदोली में एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी वे सफल थे, तो गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को क्या बुलाया? सरदार, उन्हें सरदार की उपाधि दी। तब से वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947। सरदार पटेल गृह मंत्री बने और सरदार पटेल क्या बने थे? गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा
भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्हें सौंपा गया, सूचना का और प्रसारण विभाग का, तथा भारतीय रियासतों का विभाग भी, इन सब का कार्यभार भी उन्हें ही देखना पड़ा। फिर वे उप प्रधानमंत्री बने। फिर क्या बने? वो उप प्रधानमंत्री। अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय देते हुए उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता पाई। उन्होंने क्या किया? बहुत सारी रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता पाई। केवल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में कुछ कठिनाइयां आई। वे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में उन्हें कुछ कठिनाइयों को देखना पड़ा। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ। नवाब ने 5 दिन में घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत में मिल गया। हैदराबाद में पुलिस ने एक्शन लिया और नवाब ने 5 दिन में ही अपने घुटने टेक दिए, यानी कि हार मान ली और हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। जूनागढ़ का नवाब प्रजा के विद्रोह से घबराकर पाकिस्तान भाग गया। जो जूनागढ़ का नवाब था वो प्रजा के विद्रोह से घबरा गया और कहाँ चला गया? पाकिस्तान भाग गया। सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई। सारी रियासतें किस में मिल गई? भारत में। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ खर्च घटाओ, मतलब कि उत्पादन को बढ़ाओ और खर्चा कम करो। वह आज भी सबके लिए सार्थक है, उसे आज भी लोग मानते हैं। क्या संदेश दिया था उन्होंने? उत्पादन बढ़ाओ खर्च घटाओ। पता कीजिए, अब आपको पता करना है। क्या पता करना है? आपको पता करना है कि आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको उनके काम के आधार पर उपनाम दिया गया हो, मतलब उनको काम के आधार पर उनको कोई और नाम से पुकारा जाता हो, जैसे चौधरी, पंच, मुखिया, पटवा, मेहता, जोशी या कुछ और। ठीक है, अब आपको ये पता कर कर लाना है। आगे है, अपने शिक्षक से पता कीजिए कि बेगार प्रथा क्या थी। अब आपको पता करना है कि बेगार प्रथा क्या थी। बेगार प्रथा होती है कि किसी चीज का, मतलब अगर हम किसी से कोई काम करा रहे हैं, बदले में उनको उनका पैसा नहीं दे रहे, काम करने की कोई राशि नहीं दे रहे, मतलब कि उनका मूल्य चुकाए बिना हम उनसे काम करा रहे हैं, इस प्रथा को क्या कहते हैं? बेगार प्रथा। इसमें जो काम करने वाले श्रमिक होते थे उनकी इच्छा के बिना ही उनसे काम कराया जाता था, मतलब अगर उनका मन नहीं होता था तब भी उनसे क्या कराया जाता था? काम कराया जाता था। तो इस प्रथा को क्या बोलते हैं? बेगार प्रथा। आगे है, सोचिए और बताइए। अब आपको सोचना है और बताना है। पहला है, आप कितनी भारतीय भाषाओं के नाम जानते हैं? सूची बनाइए। देखो, भारत में कितनी सारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, तमिल, और कौन कौन सी है? बंगाली, पंजाबी, है ना? तो आप इनमें से कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, आपको उनकी सूची बनानी है। ठीक है, आगे है, किसी एक परिवार की मासिक आय 5,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये हैं। दूसरे परिवार की मासिक आय 8,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये हैं। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर होगा? देखो, जो पहला परिवार है उनमें महीने का खर्चा भी 5,000 रुपये है और वो महीने की जो उनकी कमाई है वो भी 5,000 रुपये है। तो मतलब कि उनका खर्चा निकलने के बाद उनके पास हाथ में कुछ पैसा नहीं बच रहा। लेकिन जो दूसरा परिवार है उनका जो मासिक इनकम है, आय है, कितनी है? 8,000 रुपये, और खर्चा कितना है? 5,000 रुपये। मतलब खर्चा होने के बाद भी 3,000 रुपये उनके पास बच रहे हैं, मतलब वो क्या है? उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। दूसरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर है किसके कंपैरिजन में? परिवार पहले के। ठीक है, आगे है सरदार पटेल का संदेश, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ, व्यक्तिगत रूप से और देश हित में आज भी सार्थक है। कैसे? देखो, वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला था कि उत्पादन बढ़ाओ, किसी भी चीज के लिए उनकी जो उत्पन्न हो रही है, वो चीज उत्पादन हो रहा है किसी चीज का, उस चीज को बढ़ाओ और खर्चा घटाओ। अगर खर्चा कम होगा और किसी चीज का उत्पादन ज्यादा होगा तो हमारी बचत क्या होगी? ज्यादा होगी। ये हम आज भी बोलते हैं, है ना? तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा महापुरुष हमारे गौरव हैं, है ना? हमारे देश में कितने सारे महापुरुष हुए हैं, है ना? चिकित्सकों में दया और सदाचार के गुण होने चाहिए, है ना? डॉक्टर्स में क्या क्या होना चाहिए? दया और सदाचार की भावना होनी चाहिए। भारत में प्राचीन काल से ही महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने समाज हित में काम किया है। बहुत पहले के समय से ही हमारे देश में बहुत सारे महान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट हुए हैं, चिकित्सक हुए हैं और उन्होंने समाज के हित में कार्य किया है। भारत में अनेक वीरांगनाएं, वह महापुरुष हुए हैं जिनसे हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं, है ना? हमारे भारत में बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं, महापुरुष हुए हैं जिनसे हम अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें सदाचार की भावना से रहना चाहिए, है ना? आगे है जाना समझा। अब बताइए, अभी हमने बहुत सारी चीजें जानी, बहुत सारी चीजें समझी, अब आपको बताना है महापुरुषों की जीवनियों से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है। जब हम किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उन्होंने समाज के हित के लिए कितना कार्य किया है, है ना? वो हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, है ना? सबसे मिलजुल कर सदाचार की भावना के साथ रहते हैं, दया का भाव रखते हैं। तो उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, दया की भावना के साथ रहना चाहिए, है ना? आप बड़े होकर इनमें से किस महापुरुष जैसा बनना चाहते हैं और क्यों? अभी आप बताएंगे। आज हमने पूरे पाठ में बहुत सारी वीरांगनाओं और महापुरुषों के बारे में पढ़ा, अब आपको बताना है कि आप बड़े होकर इनमें से किन की तरह बनना चाहेंगे और क्यों। अभी आप लिख कर लाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? आगे है आयुर्वेदाचार्य, वीरांगना व क्रांतिकारियों का करे सम्मान, उनसे सीख लेकर हम भी बने महान। हमें हमारे चिकित्सकों का, वीरांगनाओं का, महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीख लेकर, प्रेरणा लेकर महान बनना चाहिए। तो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, आयुर्वेदाचार्य, वीरांगनाओं व क्रांतिकारियों का करे सम्मान, उनसे सीख लेकर हम भी बने महान। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।